पृष्ठ संख्या 45, परिशिष्ट। पृष्ठ संख्या 47, 19वीं सदी में स्त्री चेतना और ताराबाई शिंदे, वीर भारत तलवार। स्त्री पुरुष तुलना किताब की लेखिका ताराबाई शिंदे नवजागरण के दौर की महत्वपूर्ण स्त्री थीं, जिन्होंने भद्रवर्गीय पुरुष सुधारकों के आंदोलन की न सिर्फ सीमाओं को पार किया बल्कि उसकी कड़ी आलोचना भी की। ताराबाई शिंदे की किताब का अंग्रेजी में अनुवाद और विमोचन करते हुए रोजालिंद ओहानलोन ने ताराबाई का जीवन परिचय दिया है। ताराबाई बरार प्रांत के बुधनाला शहर में रहने वाले एक प्रभावशाली मराठा परिवार में जन्मी थीं। उनका जीवन काल 19वीं सदी का उत्तरार्ध था और वे 1905 के कुछ बाद तक जिंदा रहीं। उनके पिता बाबूजी हरी शिंदे शहर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में हेड क्लर्क थे, पर शहर के बाहर भी उनके परिवार की कुछ जमीन थी। बापूजी हरी शिंदे ताराबाई के परिवार का संबंध ज्योतिबा फुले के ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन से था। बापूजी हरी शिंदे सत्यशोधक समाज के सदस्य थे और ज्योतिबा फुले उनके पारिवारिक मित्र थे। एक सुधारक संस्था से जुड़े होने के नाते स्वाभाविक था कि वे अपनी बेटी को शिक्षित करते हैं। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में ताराबाई ने मराठी के अलावा अंग्रेजी और संस्कृत का भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया। ताराबाई निसंतान विधवा थीं। उनका दूसरा विवाह नहीं हुआ क्योंकि ब्राह्मणों के असर से कुणबी मराठों में विधवा विवाह का चलन उठ सा गया था। मराठी में लिखी गई उनकी एकमात्र किताब स्त्री पुरुष तुलना 1882 में पुणे के श्री शिवाजी छापेखाने से छपी। दूसरी बार यह करीब एक सदी बाद फूले की 100वीं पुण्यतिथि पर पुणे के रघुवंशी प्रकाशन से छपी। पृष्ठ संख्या 48। 52 पृष्ठों की इस छोटी सी किताब में ताराबाई शिंदे ने हर तरह का दोष स्त्रियों के माथे मढ़ने की पुरुषों की प्रवृत्ति की और उन्हीं के बनाए स्त्री धर्म कोष्टक में पतिव्रत धर्म कोष्टक बंद की इतनी तीखी आलोचना की जिससे बहुत से पुरुष सुधारक बौखला उठे। यहाँ तक कि एक ब्राह्मण विरोधी लेखक ने भी ताराबाई की किताब की आलोचना की। जब ताराबाई की किताब पर पुरुषों के हमले हो रहे थे, ज्योतिबा फुले ताराबाई के पक्ष में खड़े हुए। फुले ने उनकी किताब देखी थी। ब्राह्मणों द्वारा स्त्रियों को अशिक्षित रखने और उन पर हर तरह के दोष मढ़ने की प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए उन्होंने स्त्रियों की लड़ाई लड़ रही पंडिता रमाबाई का नाम लिया और लिखा कि रमाबाई से भी पहले यह लड़ाई ताराबाई ने लड़ी। कोष्टक में पृष्ठ 19 भूमिका ए कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन ताराबाई शिंदे एंड द क्रिटिक ऑफ जेंडर रिलेशंस इन कॉलोनियल इंडिया रोजालिन ओहालन। 19वीं सदी के समाज में स्त्री पुरुष संबंधों के प्रति ताराबाई की आलोचना का अध्ययन करते हुए रोजालिन इस नतीजे पर पहुंची कि भद्रवर्गीय पुरुषों के सुधार आंदोलन से समाज का चरित्र और ज़्यादा ब्राह्मणवादी बना। पूर्व औपनिवेशिक काल के मुकाबले वह जाति बंधनों में और ज़्यादा जकड़ गया। भद्रवर्गीय पुरुष सुधारकों ने स्त्री पुरुष संबंधों के जिन प्रतिमानों को प्रचारित किया, उन्होंने समाज को और पारंपरिक बनाने में भूमिका अदा की। कहना मुश्किल है कि ये निष्कर्ष कहाँ तक सही या गलत हैं। बंगाल के नवजागरण पर लिखते हुए सुमित सरकार ने इन निष्कर्षों से असहमति जताई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भद्रवर्गीय पुरुष सुधारकों के कई विचार स्त्रियों को नए सिरे से और ज़्यादा मर्यादाओं से बांधते थे। ऐसा सिर्फ ऊंची समझी जाने वाली जातियों में ही नहीं बल्कि उनके असर से ब्राह्मण विरोधी जातियों के आंदोलन में भी हुआ और फूले के असर के बावजूद हुआ, जैसा कि ताराबाई की किताब से झलकता है। पृष्ठ संख्या 49। जिस बात को रोजालिन नज़रअंदाज करती हैं वह इस प्रक्रिया में पैदा होने वाले अंतर्विरोधों की गतिशीलता थी जो पुरुष सुधारकों की इच्छाओं के विरुद्ध काम करती रहीं। इतिहास में चीज़ें कभी भी अपनी तयशुदा सीमाओं में नहीं रहती। बदलाव की जिन शक्तियों को पुरुष सुधारक बढ़ावा दे रहे थे, उनके असर से स्त्रियों को ज़्यादा दिनों तक बचा कर रखना मुमकिन नहीं था। रोजालिन ने रूढ़िवादी धर्म और समाज के खिलाफ ताराबाई की आलोचना की भाषा को सत्यशोधक समाज की भाषा के समान पाया, लेकिन दोनों में इस महत्वपूर्ण फर्क को भी स्पष्ट किया है कि स्त्रियों के पिछड़ेपन के लिए सत्यशोधक समाज जहाँ सिर्फ ब्राह्मणों की आलोचना करता था, ताराबाई ने जाति वर्ण का लिहाज किए बिना सभी पुरुषों की आलोचना की। ताराबाई शिंदे ने स्त्री धर्म कोष्टक में पतिव्रत धर्म को अपनी आलोचना का खास निशाना बनाया। स्त्री धर्म क्या है? हर हालत में पति की आज्ञा मानना और वह जो कुछ कहता उसे करना। कई कारणों से ताराबाई ने इस धर्म को बिल्कुल ठुकरा दिया। व्यभिचार की इच्छा रखने वाले पुरुष की आज्ञा को हरगिज नहीं मानना चाहिए। जो पति चोरी करता हो, जुआ खेलता हो, घुसखोर हो, खूनी हो, क्या उसकी हर आज्ञा को माना जा सकता है? जब किसी का उचित अनुचित का विवेक जग जाए तो ऐसे में स्त्री धर्म का पालन कैसे हो सकता है? भले बुरे के ज्ञान के बाद क्या ऐसे स्त्री धर्म पर विश्वास बना रह सकता है? ताराभाई ने यहाँ पारिवारिक धर्म के खिलाफ नैतिकता का सवाल उठाया। उन्होंने अपने नैतिक बोध और उचित अनुचित के विवेक के आधार पर शास्त्रों में वर्णित और लोक में प्रचलित पतिव्रत धर्म को नामंजूर कर दिया। वास्तविक समाज में यह धर्मशास्त्र के बताए ढंग से चलता भी नहीं, क्योंकि यह अव्यवहारिक और असंभव है। स्त्री के पतिव्रत रहने पर इतना जोर देना ही गलत है, इसलिए नहीं कि स्त्रियों के लिए व्यभिचार की छूट चाहिए। पृष्ठ संख्या 50। स्त्रियां तो अपने धर्म पर अडिग रहने वाली हैं। जोर देना गलत इसलिए है क्योंकि जो लोग इस आदर्श को कठोरता से लागू करने की मांग करते हैं, वे वास्तविक परिस्थितियों को नहीं देखते हैं जिसमें स्त्रियां रहती हैं। डंडे के बल पर पालन करा लेना और बात है। इस सिलसिले में ताराबाई शिंदे ने मराठी कथा साहित्य की आलोचना की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठी कथा साहित्य में स्त्री चरित नाम से एक विधा ही चल पड़ी थी जिसमें किसी अच्छे या बुरे चरित्र वाले स्त्री के काम और उसके नतीजे को दिखलाते हुए स्त्री संबंधी आदर्शों की प्रतिष्ठा की जाती थी। ताराबाई ने इन चरित्र कथाओं कि अच्छी या बुरी स्त्रियों के चरित्र को अविश्वसनीय ठहराया, क्योंकि वास्तविक जीवन में ऐसे स्त्री चरित्र कहीं नहीं मिलते हैं। स्त्री चरित्र की कुछ कथाएं इतनी शरारतपूर्ण और उबकाई पैदा करने वाली थीं जिन्हें पढ़ने में शर्म महसूस होती थी। ताराबाई ने कुछ एक स्त्री चरित्रों जैसे मुक्तमाला 1861, मंजू घोष 1868, एक नाटक मनोरमा 1871 सामने रखकर उनकी आलोचना की। मुक्तमाला में एक ऊंची जाति के सरदार की बेटी की कहानी थी जिसके पति को राजा ने नाराज होकर जेल में डाल दिया था। पति से मिलने की कोशिश में मुक्तमाला एक धूर्त अधिकारी भद्राक्ष के चुंगल में फंस जाती है जो उससे भयंकर यातनाएं देता है और घने अंधेरे जंगल में ले जाता है। लेखक ने दिखाया है कि अंधकारपूर्ण जंगल में भी निहत्थी और बेसहारा मुक्तमाला अपने स्त्री धर्म की रक्षा करती है। ऊंची जातियों की स्त्रियों को हर हालत में सती साध्वी दिखाने वाली ऐसी चरित कथाओं को ताराबाई ने जीवन के सहज अनुभव के आधार पर ठुकरा दिया। एक शक्तिशाली पुरुष के आगे शारीरिक रूप से कमजोर और निहत्थी स्त्री को जंगल में अकेले स्त्री धर्म की रक्षा करते हुए दिखाना अविश्वसनीय हो सकता है। हर हालत में सतीत्व की रक्षा कर पाना मुमकिन भी नहीं हो सकता है, इसलिए सतीत्व लूट जाने की दोषी उस स्त्री को नहीं मानना चाहिए। पृष्ठ संख्या 51। उसकी स्थिति के साथ न्याय करने के लिए उसकी परिस्थिति को सहानुभूति से देखना चाहिए। मुक्तमाला के लेखक में न यह न्याय दृष्टि है, न सामाजिक वास्तविकता से उसका मेल। ताराबाई यह कटाक्ष करना भी नहीं भूलती हैं कि जब हमारे इंद्र और कृष्ण जैसे देवता ही स्त्रियों का सतीत्व लूटने के लिए धूर्तता की राह अपनाते हैं, तो फिर उनके अनुयायी पुरुष क्यों नहीं अपनाएंगे? पुरुष पतिव्रत धर्म के बारे में इतना हल्ला क्यों मचाते हैं, जबकि वे ही दूसरों के घर परिवार बर्बाद करते हैं? पतिव्रत धर्म का पालन न करने के लिए स्त्रियों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति के खिलाफ ताराबाई ने उलटकर पुरुषों की नैतिकता पर सवाल खड़ा किया। स्त्रियों को बहला फुसला कर उनसे व्यभिचार कराने वाले, फिर उन्हें त्याग देने वाले पुरुषों को अदालत कोई सजा क्यों नहीं देती? वह इस कानून से वाकिफ नजर आती हैं कि बिना गवाही के व्यभिचारी को सजा नहीं मिल सकती, और ऐसे मामलों में अक्सर गवाही मिलनी मुश्किल होती है। इस अंजाम के लिए ताराबाई अंग्रेज सरकार को भी जिम्मेदार ठहराती हैं। वह सुझाती हैं कि जैसे सरकार रिश्वत लेने और देने वाले दोनों को सजा देती है, देने वाले से लेने वाले को दोगुनी सजा देती है, उसी तरह व्यभिचार के मामले में भी स्त्री पुरुष दोनों को सजा मिलनी चाहिए। स्त्री से दो गुनी सजा उस पुरुष को मिलनी चाहिए जिसने व्यभिचार का जाल बिछाया। 19वीं सदी के पुरुष शास्त्रों और पुराणों का हवाला देकर पतिव्रत धर्म की वकालत करते थे, ताराबाई ने उन शास्त्रों और पुराणों को ही चुनौती दी। ताराबाई की किताब में शास्त्र और पुराणों के संदर्भ भरे पड़े हैं, पर कड़ी आलोचनाओं के साथ वह पूछती हैं कि शास्त्रों और पुराणों में जिन स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का आदर्श बताया गया है, द्रौपदी, अहिल्या, सत्यवती और कुंती, क्या उनका भी चरित्र विवादास्पद नहीं? क्या उनमें से हर एक ने गुप्त रूप से विवाहेतर प्रेम नहीं किया? सच बात तो यह है कि पुरुष पंडितों के बनाए स्त्री धर्म का पालन न पहले कभी होता था, न आज हो सकता है। इससे भी आगे बढ़कर ताराबाई स्त्री धर्म की अनैतिकता को उजागर करती हैं।